बल्कि एक हृदय को दूसरे हृदय से बहुत दूर बहुत दूर, जिसको एरोप्लेन और मन की गति भी नहीं पा सकती कितना दूर कर लिया। वहां के व्यक्तियों को तो यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार इत्यादि से तो बहुत निकट ला दिया, किंतु एक निकट रहते एक फ्लैट में रहने वाले लोग एक परिवार में रहने वाले लोगों का परस्पर प्रेम नहीं विश्वास नहीं। स्त्री का बैल अलग बैलेंस अलग, पति का बैल बैलेंस अलग, बेटी का अलग। अभी 6 वर्ष का 5 वर्ष का लड़का है उस धनी घर में, उसका अलग ठिकाना, विश्वास नहीं किसी पर, क्या होगा कुछ यही पता नहीं। इसलिए इस जो अविष्कार इत्यादि है वैज्ञानिक उन्नति है, जो परस्पर प्रीति और सुख और आनंद था इसमें, इसको जगत से निकाल करके फेंक दिया बहुत दूर। ये समस्या है युग की, किसी पर विश्वास नहीं। आत्मा के जो मूल के परोपकार इत्यादि वो धीरे धीरे बन, आदमी भगवान की तरफ भी चलता था वो सब बोल सब चले गए। एक आदमी सड़क के किनारे चल रहा है वो गिर गया, हजार लोग मेरे पास कर रही है, हजार लोग जा रहे हैं, किसी चलता नहीं है मारा नहीं, जाओ लोग सब करके उस व्यक्ति को उठा करके अस्पताल में हमको पहुंचा। वैज्ञानिक उन्नतियां भी हैं, उसके घर में सभी कुछ है, सब कुछ है, एयर कंडीशन घर है, करोड़पति हैं, सब कुछ है, इस घर में बेटे से बनती नहीं, स्त्री से बनती नहीं, बहू से बनती नहीं, आनंद रहेगा श्रीमद् भागवत। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो भागवत के अनुसार ही चलो अपना जीवन बनाओ, एक दरिद्र परिवार है, बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके चलाते हैं, राका बाका का नाम सुना होगा, राका बाका बहुत गरीब थे, लकड़ी जंगल से काट करके या चुन करके लाते, शहरों में बेचते, 2-4 पैसे का सत्तू ले लेते, जीवन निर्वाह करते, दोनों एक दूसरे से बढ़ते भगवत स्मरण करते हैं, करते भगवान की भक्ति करते। एक दिन नारद जी प्रभु के पास में, प्रभु ये राका बाका इतना दरिद्र, आपकी आंखों से ये उछल आप देखते नहीं हैं, इनको धन संपत्ति क्यों नहीं कुछ दे देते, ये सबसे बैठ करके आपका भजन करें और खाए जाए। प्रभु जी ने कहा मैंने देने की काफी चेष्टा की किंतु ये देते नहीं, तो ये हमको विश्वास है। अच्छा तो तुम ही दे दो, एक कटरी में सर्फियाँ भरकर नारद जी को दे दिया और एक पेड़ पर चढ़ करके प्रभु देखने लगे। नारद जी ने क्या किया, राका बाका वन में जा रहे थे लकड़ी काटने, वहाँ से लाने के लिए और बेचने के लिए सहन, तो प्रभु ने नारद जी ने लेकर के उनके सामने बहुत, जब वो दूर थे जब वो देख न सके तो उसको और सर्फियों को पोटली लेकर के वहाँ पर रख दिया और चुपचाप अलग रूप में कहीं छिप करके देखने लगे क्या हो रहा है। इतने में राका भगवत स्मरण करते हुए वहां आया, देखिए तो अशक्तियां हैं सोने की, यह पड़ी हुई है, उसने कहा कि यदि बांका आई तो शायद उसकी निगाह तो पड़ जाए और लोग से उसको उठा लेगी और उस अर्थ के पाने से अब भगवान को भूल जाएगी, अंत में जीवन बर्बाद हो जाए। हम लोग बड़े खुशी इसलिए धूप उठा करके उसको देने लगते, जब ढक रहे थे इतने में बांका आ गई, मुझे ये क्या कर रहे हैं धूल पर धूल किस लिए दे रहे हैं, देख करके दंग रह गए। उसके दृष्टि में भी धूल, उसके दृष्टि में भी यह परिवार सुखी है, ना दुर्योधन और रावण और कुंभकर्ण का ये मेघनाथ का कंसा अच्छा है, कौन सा सुखी परिवार है विचार करो, दुर्योधन नहीं कि सोने की लंका वाला, रावण सुखी है, काम की वासना हृदय में है, वो तृप्त नहीं हो रही, भाई के प्रति स्नेह नहीं वात से भरा, इसलिए युग की समस्या है प्रेम। किंतु यह प्रेम कैसा होना चाहिए, परस्पर प्रेम नहीं, परस्पर तो मैत्री होती है। ये जगत में प्रेम का स्थान नहीं है इस जड़ जगत में, उसके आभास की केवल जरूरत होती है, वही वो इसमें है। शुद्ध प्रेम इस जगत में नहीं है, बैकुंठ और बैकुंठ से ऊपर है। यहाँ पर प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, भगवान के साथ में प्रेम, ये भागवत की कथा में आया है। ये मध्यम भक्तों का ये लक्षण है, भगवान के प्रति प्रेम और उसी की इच्छा लेकर के अपने बराबर वालों के प्रति मित्रता। जो ऊपर वाले वैष्णव हैं, संत हैं, मनुष्य हैं, उनके प्रति सेवा से युक्त मैत्री, बराबर वालों से क्या होगा मैत्री, और अपने से कम वालों के प्रति प्रीति युक्त, दया युक्त, सख्य भाव। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, विरोधी हैं, उनके प्रति उपेक्षा करते हैं, यह मध्यम अधिकार है। इस चीज को और अच्छी तरह से समझने के लिए श्रीमद् भागवत के एक एक पौड़ी लेकर के मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन करा रहा हूं। भक्तों को पांच श्रेणी में बांटा गया, जिनके अंदर में भगवत प्रेम है, पांच श्रेणी। एक होते हैं ज्ञानी भक्त, दूसरे होते हैं शुद्ध भक्त, तीसरे हैं प्रेमी भक्त, चौथे हैं प्रेम पर, और पांचवे प्रेमातुल। इस जगत में यही सब होते हैं, इससे ऊपर नहीं। ज्ञानी भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज जी, आप लोगों ने उनका चरित्र सुना, सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं, उनके भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु जगत के सबका पालन पोषण करते हैं, उनको प्यास नहीं लगती, किंतु सभी का प्यास उठा देते हैं। वो सर्वत्र हैं, सबके हृदय में है, बाहर में है, उनके बिना किसी की सत्ता नहीं हो सकती, इसलिए वो प्रभु को खड़ग खंभ अस्त्र शस्त्र सर्वत्र ही वो अण अणु में भगवान का दर्शन करते हैं। इनको कहते हैं ज्ञानी भक्त। क्यों? उनके प्रभु की कोई सेवा नहीं कर सकते ये, क्यों? उनके प्रभु इतने समर्थ हैं कि उनको कोई प्रभु को कोई सेवा की जरूरत नहीं है, बस हे प्रभु मैं आपका हूं, ये प्राणी सब आपके हैं, कितना देखने से ही बस वो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। उनके प्रभु सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं, इसलिए उनकी क्या कोई सेवा कर सकता है, इसलिए उसमें सेवा का कुछ अभाव है, क्योंकि उनके प्रभु को नितिन जी को भूख लगेगी, उनको कोई डर की बात, उनकी पत्नी को कोई चुरा ले जाएगा? प्रहलाद महाराज जी के प्रभु के पत्नी को कोई नहीं चुरा सकता, उनको किसी चीज की सेवा की आवश्यकता नहीं, इसलिए इनको कहते हैं ज्ञानी भक्त। थोड़ा सा ऊपर उठिए, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? अम्बरीश महाराज, जिनका चरित्र देखा ना, महाजोगी। और कैसे जोगी? कहते हैं जैसे तुम जल करके खाक हो जाओ तो वो खाक हो जाए, किसी को कुछ कर दिया वही जरूर होगा, ऐसे महात्मा जिसे सब लोग डरते हैं, ऐसे थे दुर्वासा। और अम्बरीश महाराज ये काशी करते थे किस लिए? अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भवसागर को पार होने के लिए नहीं, किस लिए? प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु की भक्ति हमारे अंदर में आए, बस यही एक कामना थी। प्रभु के प्रति हमारी विशुद्ध, हम उनके प्रति हमारी प्रीति प्रेम हो, बस यही एक आकांक्षा। उन्होंने इसीलिए द्वादशी का व्रत किया, एकादशी में जो द्वादशी होती है, अब उनका पारण करना था। एकादशी करने के बाद में जो लोग नियत समय के अंदर में व्रत का पारण नहीं करते, ठाकुर जी का भोग लगा करके विष्णु वैष्णव को देकर के कुछ नहीं ले लेते, तो उनका व्रत का फल आधा नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन में नियमित समय पर पारण करना जरूरी है, प्राय 9:30 के अंदर में होता है, कभी कभी इसका प्रतिक्रम भी हो जाता है, कभी कभी सूर्य उदय के एकदम ठीक बाद भी है, कभी 9:30 के बाद भी हो सकता है, किंतु साधारण रूप में 9 के पहले ही वो हो जाता है। उस दिन था सूर्योदय के ठीक 10-15 बाद ही में, वो एकादशी का पारण करना चाह रहे थे, इतने दुर्वासा जी बिना बुलाए आ गए, बोले जी आज तक मुझे बड़ी भूख है, आज उन्होंने कहा जो हमारा परम सौभाग्य है कि आपके जैसे ब्रह्मर्षि हमारे घर में पधारे हैं एक द्वादशी के दिन। उन्होंने कहा जी मैं अभी तुरंत जाता हूँ यमुना पास में, मैं स्नान करके आऊँ और तब तक तुम हमारा भोजन तैयार। वो गए, जाने में 1 देरी कर दिया, इधर पारण का समय नष्ट हो रहा है, यदि पारण का समय नष्ट हो गया तो भगवत भक्ति उनकी नष्ट होगी, उसका फल नहीं होगा एकादशी करने का। और इस हमें इस ब्रह्म का अनादर करते हैं, उनको न्योता दिया, उनको नहीं खिलाते हैं, तो ये सत्कर्म का विरोधी हुआ, इनको पाप लगेगा। अब क्या करें, पाप कमाई करें न भगवान की प्रीति के लिए एकादशी का पालन कर लें, ये विचार कर रहे हैं, सोचा पाप पुण्य से ये लगा रहेगा। हम तो इस समय करेंगे भगवान की प्रीति के लिए, हम सब कुछ करेंगे, इसलिए हमको पानी लेकर के भी निर्जल आपको उपवास किया है, हमको पानी लेकर के व्रत को यहाँ पानी दिया, चरणामृत दिया ठाकुर जी का, इतने में दुर्वासा जी आ गए और इतने खा लिया, हमको निमंत्रण दिया, पहले तुमने पालन कर लिया, अच्छा बस एक सिर का केस निकाल करके उनके ऊपर में जाओ, उसको जला दो, वो भयंकर आग होकर के उनको जलाने के लिए दौड़ी, और वो बीच समय चारों तरफ में भटकते भटकते ब्रह्मा विष्णु सबके पास में गए, किसी ने शरण नहीं दिया। अंत में विष्णु ने कहा, ये जाओ जहाँ पर कांटा गड़ता है वहीं से निकलेगा, जाओ उनके पास में क्षमा मांगो, वहां फिर लौट करके उनके पास में आए, उनसे क्षमा मांगी। वो तो क्षमा के अवतार हैं, पहले ही ऋषि के चरणों में गिर गए, उन्होंने अपनी भूल देखी, बच्चों का अद्भुत कैसा महात्मा, भगवान में प्रीति होने के कारण जगत को सबको सम्मान देने वाले, ये कोई समझ नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाया ब्रह्म ज्ञानी होने पर भी, इसलिए उनके चरणों में लौट गए, उन्होंने इसलिए एक ऐसा ब्रह्म तेज वाला ऋषि भी, एक साधारण ये जैसे लगते हैं राजा थे, राज्य काज करते और वो भगवान का भजन करते, एकादशी को ऐसे मर जाएंगे, मर जाएंगे, एकादशी का हम नहीं किया करते, कैसी निष्ठा थी। इसलिए हर उनका मंदिर था, राजा तो थे, राज का काम मंत्री लोग करते, धार्मिक कार्य पुरोहित लोग करते, और अपने क्या करते, मंदिर बना रखा था, ठाकुर जी की सेवा थी, राधा कृष्ण की, वहीं पर मथुरा में रह करके उनकी सेवा करते, अपने हाथ से पोछा लगाते, अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाते, अपने पंखे अपने हाथों से चलाते, नौकरों के द्वारा के नहीं, नौकर सेवा नहीं कर सकता है पैसा लेकर, इसे सभी करते थे, इसलिए इनको प्रेमी इनको कहा गया शुद्ध भक्त। और आगे बढ़िए, अब आए हनुमान जी, हनुमान जी का प्रेमी अहिचार, ये प्रेम भक्त, राम के लिए क्या नहीं किया, सारा जीवन राम की सेवा इन्होंने की, इनके प्रभु को भूख लगती है, प्यास भी लगती है, राम की सीता, रामचंद्र जी की सीता को रावण हरण करके ले गया, बहुत जरूरत थी, उन्होंने उनकी सेवा के लिए कितना मील का समुद्र, कितना योजन, और उसको पार कर गए, बीच में सुसा आई, जब तक सुसा बदन बढ़ावा, ताही दुगन रूप कपित का, इस तरह से वहां पर लंकनी आई, लंकनी को भी मारा, और वहां पर जाकर के सीता जी का आविष्कार किया, और लंका को पूरी जला करके चले आए, बोले कि राम का यदि होता आदेश तो सीता जी को अपने कंधे पर लेकर के मैं पहुंच जाता। सीता जी ने कहा जी नहीं, वो खुद आए, सारा जीवन इन्होंने शादी नहीं की, इसलिए हमारा राम के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, कोई लड़का नहीं इनके लिए जुआ, कोई घर अपने लिए नहीं किया, बस दिन रात राम की सेवा करते हैं, थोड़ा और ऊपर बढ़िए, इनके प्रेम में कमी है, ये खुद समझते हैं। सीता जी के साथ में रामचंद्र जी अपने शयन गृह में है, वहां पर ये जा सकते हैं कि नहीं, हनुमान जी लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी गलबहियां लगा लेते हैं और भैया भैया पुकारते हैं, हनुमान को ऐसा कर सकते हैं, संभव बात नहीं, इनका दास्य भाव है, इसलिए प्रभु से थोड़ा सा दूर रहते हैं, इनसे ऊपर और चलिए। पांडवों का प्रेम, पांडवों का प्रेम प्रेम पर है, अपने भक्त के लिए कृष्ण ने अपनी बहन की शादी कर दी, साला बन गए, कुंती जी के ये पुत्र हैं पार्थ, ये कुंती जी कौन है, कृष्ण की बुआ जी हैं, संबंध भाई का बना लिया, और ऐसा प्रेम कि प्रभु की सेवा होनी चाहिए कि और प्रभु उनका सारथी बना करके उनके घोड़ों को धोते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घर का सब काम करते हैं, द्रौपदी जी को कपड़े भी पहनाने का काम अपने हाथ में दे दिया कि नहीं, लोग नहीं कर रहे थे तो कृष्ण ने कहा ये काम दूसरों से नहीं होगा, इसलिए हमारी प्यारी सखी जो है मैं इसके कपड़े पहनाऊंगा, कपड़े दूसरे ला करके नहीं अपने कपड़े होकर के और उनको लिपट करके उनकी लज्जा रखें, वस्त्र अवतार होता है। ऐसा किसी के लिए दूसरों के लिए किया, हनुमान जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन का कुछ और तरीका है और प्रेम निराला, उनका रथ चलाया जाता जो दिख में खड़ा करो रथ तो, अरे विष्णु ब्रह्मांड इसी आज्ञा के लिए तरसते हैं, जिनका दर्शन नहीं पाते, ब्रह्मा जिनका ध्यान करने में भी उनको नहीं पाते, आज अर्जुन युद्ध में अपने रथ पर बैठा कर करें उधर ले चलो उधर ले चलो ऐसा करो, अब कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो अर्जुन के रथ पर बैठ करके उनका सारथ्य का काम कर रहे हैं। इस तरह से अर्जुन का प्रेम देते हैं, इस प्रेम से भी अधिक किसका है उद्धव इत्यादि जगवंशियों का, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी के बाबा जी हैं, किसी के नाना हैं, किसी के मामा हैं, किसी के क्या क्या लगते हैं। अभिमन्यु के कृष्ण ये क्या लगेंगे, कृष्ण मामा लगेंगे ना। इस तरह से यदुवंशियों के ऐसे नाता जोड़ करके और बड़े प्रेम से वहां रहते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, ये उद्धव जी को ब्रज में गए हैं और जाकर के गोपियों का प्रेम देखा, क्या देखा, अर्जुन कल्पना नहीं कर सकते, ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते, उद्धव जी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। कृष्ण ने कहा जरा जाओ तो मथुरा वाला चश्मा ले लो, मथुरा का चश्मा लेकर के वृंदावन में जाकर के गोपियों का प्रेम देखो। देखो मैं वहीं पर पढ़ा हूं वहां की पाठशाला में, प्रेम को पढ़ने के लिए वो प्रेम की पाठशाला में जाना होगा, उस पाठशाला में मैंने पढ़ा। गुरु कौन है, उद्धव जी ने पूछा, वहां पर बहुत से गुरु हैं, गुरु माने प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल श्रीमती राधिका जी प्रिंसिपल, ललिता विशाखा इत्यादि एक एक विषय के प्रोफेसर हैं, और श्रीमती राधिका जी सबके ऊपर वाली वो प्रेम की प्रिंसिपल है, वहां पर हमने पढ़ी। यहाँ पर मथुरा में कोई बातचीत करने वाला नहीं है प्रेम के साथ में, जिसके साथ में बातचीत कर सकूँ, कोई प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानता है, इसलिए तुम उसी पाठशाला में जाओ। किंतु उनको ऊपर से नहीं कहा, ऊपर से कहा हमारे प्रेम में बेवल होकर के तड़प रहे हैं, हमारे पिताजी तड़प रहे हैं, इसलिए आप जाकर के सांत्वना दीजिए, उठिए मत चुपचाप बैठिए, उनको सांत्वना दीजिए। अब यहां पर एक चीज समझना है, अभी तक जो प्रेम कहा, प्रेम तो प्रहलाद महाराज में भी है, प्रेम अंबरीश महाराज में भी है, प्रेम प्रहलाद महाराज के हनुमान में भी है, और प्रेम पांडव में भी है, उद्धव में भी है, किंतु प्रेम किसका भी है सर्वोत्तम। उद्धव जी कहते हैं ये गोपियों की चरण धूली यदि हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, वृंदावन में घाट इत्यादि होकर के पैदा हो जाए। इसलिए इसलिए कि जब भी यहाँ पर आए पाठशाला में कुछ दिन पढ़े तो प्रेम के संबंध में कुछ आइडिया हुआ, तब वो तुलना मतलब दृष्टि से विचार करते हैं। प्रेम के दो पहलू हैं, क्या प्रेम, प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम कहते हैं चित्त की वृत्ति अपने आप कंटिन्यूएट रूप में अभिच्छिन्न गति से स्वाभाविक रूप में कृष्ण के चरणों में निरंतर लगे, यह है प्रेम। प्रेम में स्वार्थ नहीं, वो लेना नहीं जानता है प्रेमी व्यक्ति, क्या चाहता है अपना सर्वस्व अपने प्रभु के लिए समर्पित उसको देना चाहता है प्रेमी, अपना शरीर अपना तन मन वचन धन जीवन यौवन जो कुछ वह सौंदर्य सब कुछ प्रेमी को समर्पित कर देता है। गोपियों ने यही चीज कृष्ण के लिए दिया था, कृष्ण उसका ऋण नहीं चुका सकते। प्रारंभ से ही देखिए गोपियों का एक प्रेम है मिलन का और दूसरा क्या है उसका पहलू विरह का। प्रेम में मिलन का जो गोपियों के साथ में जो प्रेम है इतना ऊंचा है जिसको कोई भी आज तक नहीं छू सका। राम और सीता में भी बहुत प्रेम है, आदर्श है, थोड़ा सा हम लोग उस पर चले, ये भी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, इसीलिए वर्णन किया कि हम लोग तुलना में उस दृष्टि से देख सकते हैं। रामचंद्र जी सीता से बहुत प्यार करते हैं और सीता जी क्या करती हैं राम से, बहुत प्यार। राम ने कहा कि घर में रहो, जंगल में मत चलो हमारे साथ में, तुमको कष्ट होगा। उन्होंने कहा कि हम जंगल में तुम्हारे साथ में, हमको जो दुख है वही हमारे लिए सुख है, अपने पिता के घर में चली जाओ। महाराज जाने के नहीं, हमको ये सूख बिच्छू की तरफ में काटेंगे, हम तो आप ही के साथ में चले। वहां से क्या क्या हुआ आप लोग सभी जानते हैं। सीता को रावण हर सबसे ले गया, राम ने अनुसंधान कराया और अंत में रावण पर विजय पाकर के उसके वंश को ध्वंस करके, और फिर वो जब आने की तैयारी होती है तो सीता जी को बुलवाया। सीता जी आज तक उन्होंने खाया नहीं, स्नान नहीं किया, श्रृंगार नहीं किया, पति के घर में रहने पर ही श्रृंगार हमारी संस्कृति के अनुसार में पत्नियां करती, पति परदेश में होने पर श्रृंगार किसके लिए करेंगे। इसे सीता जी ने आज तक न तो स्नान किया, न खाया, न पानी पिया, किस तरह से रही। अनुसुईया जी ने उनको दिया था ना कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी जो भूख न लगे, प्यार उनका सौंदर्य धूमिल न हो जाए और कपड़े बदलने की जरूरत न पड़े और स्नान करने की जरूरत नहीं रहे, जैसे कि तैसी बन गई। वैसे एक वर्ष के बाद मैं राम के पास में लौटी, राजसभा लगी हुई है, उसमें बंदर भालू इत्यादि सुग्रीव विभीषण सब लोग खड़े, पालके से उतार करके लाओ, पालके से उतार दो, इन लोगों ने इनके लिए प्राण दिया है, उनको बुलाओ। दर्शन सुगत उठा करके आए सबके सामने। पिताजी ने आदेश का पालन किया। जब निकट में आई राम ने कहा मैंने अपनी क्षत्रियता की लाज रखी, हमारी पत्नी को जो चुरा लाया उसको मैंने भरपूर दंड दिया, उसके बंश में किसी को नहीं रखा, अब आपकी जहां इच्छा हो चली जाए, अब आपसे हमारा कोई भी संबंध नहीं। मतलब ये प्रेम है। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करना था, लक्ष्मण जी ने सीता जलाई, उन्होंने कहा कि जब हमको नहीं ग्रहण करते तो मैं अभी आग में जल सकूं, मेरी मैया आग, यदि मैंने राम की अपेक्षा और किसी को स्पर्श नहीं किया तो आप शीतल हो जाए। बस अपने देवता प्रकट हुए, सीता जी को अपने हाथों में लिया और रामचंद्र जी को समर्पण कर दिया। सीता जी परम पवित्र हैं, मैं जानता हूं, सब व्यापी हूं, सब जगह रहता हूं। सीता जी परम पवित्र, उसमें महाराज दशरथ आए और ऋषि पर आए, सबने इंद्र जी आए, सीता जी परम पवित्र है आप। उन्होंने उनको ग्रहण किया, दूसरी बात फिर उनको प्रत्याग कर दिया, जीवन भर के लिए प्रत्याग कर दिया। किंतु सीता जी ने उनके ऊपर दोष देखा, क्योंकि इस प्रेम में एक कमी है, कमी का मर्यादा से बना हुआ यह प्रेम है, मर्यादा भंग होता है यह प्रेम टूट सकता है। सीता जी को प्रत्याग दिया, इसलिए मर्यादा के लिए एक धोबी का रहा है बदमाश लोफर धोबी कि सीता जी तो वहां रही, राम ने उसका कुछ विचार नहीं किया, मेरी पत्नी तू अभी तक तू 9 बजे तक रात में कहां थी, बतला तो 1 लाख मारा उसको घर से बाहर। अजी ये धोबी तक हमारी आलोचना करते हैं, बस उस धोबी के कहने से परम पिता प्रिय सीता जी को घर से निकाल दिया। ये मर्यादा से बंधा हुआ है, ऐसा प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम कैसा चाहिए, अब चलिए ब्रज में। ब्रज का प्रेम मर्यादा से बंधा हुआ है, मर्यादा उनका दास है उस प्रेम का। वहां पर पार्थिव भाव गोपियों के साथ में है, यही दिखला रहे हैं। पहला दिखलाया क्या है, गोपियों ने अपने पति को, जिनका पुत्र था वो पुत्र को, भाई बंधु सास ससुर माता पिता सबको प्रत्याग करके कृष्ण के एक बंसी की तान पर सब छोड़ करके, क्यों कृष्ण प्राणों के प्राण पति को भी पति हैं, सब लोग उनके पास में। कृष्ण ने कहा अब घर में लौट जाओ, ये देखिए मिलन का भाव, आप लोग घर में जाइए, अपने पतियों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, बंधु और पुत्रों के साथ हमसे मिलना उचित नहीं, और मिलन हो गया मैं भगवान हूं ना, इसलिए आप लोगों ने दर्शन कर लिया लौट आए। यदि पति लगड़ा हो लुढ़ा हो तो भी इसी सेवा ही करें, यही हमारी संस्कृति। गोपियों ने कहा जैसे हमारी गुरु की भी तो महिमा शास्त्रों में है, गुरु की आगे पूजा करके तब कोई कुछ काम करो। तो आपने इतना सुंदर उपदेश दिया तो आपको हमने गुरु बना दिया। तो अब गुरु होने के कारण अब हम आपकी सेवा करनी चाहते हैं, पहले हमारी सेवा लीजिए, और गुरु होकर किसी नहीं देते तो इसका पाप आपको लगेगा, इसलिए हमारी सेवा आपको ग्रहण करें। यदि पाप लगेगा तो आपको हम लोगों को नहीं, इसलिए गीता ने कहा जी सब धर्म को छोड़ करके हमारे पास में आओ, मैं भगवान हूं, सर्वधर्मानुपत्यजमान एकम शरणम व्रज इत्यादि ने कहा और भी कहा। इसलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास में आए तो हम क्या बुरा किया, इसलिए यदि आप हमको नहीं ग्रहण करते हैं तो ये आपको पाप लगेगा। तीसरी बात, हमारे पत्नियों के ही नहीं विश्व ब्रह्मांड के आप पति हैं, इसलिए आप हमारे पति हुए, आप ही सच्चे पति हैं। ये तो हैं एक जन्म के 100 वर्ष से अधिक से, और आप पति हैं जन्म जन्मांतरों के आप पति हैं, इसलिए हमारी सेवा आपको। सब युक्तियों से कृष्ण का मुख बंद कर दिया, रास ऐसा सुंदर रास हुआ जो आज तक कभी देखा सुना नहीं गया। कृष्ण पर ब्रह्म होकर के तृप्त होने के लिए उतना ही जितना गोपियां थी उतना रूप धारण किया, और उनके साथ में हाथों में हाथ लगा करके उच्चे स्वर से कहीं पंचम स्वर से गान करते हैं, गोपियां सप्तम स्वर से गान करती हैं, कृष्ण कहते हैं साधु साधु साधु। कृष्ण की आवाज बड़ी सुरीली है, और राधिका जी की कृष्ण के स्वर को भी मात करने वाली और उनको वर्तीभूत करने वाला उसका स्वर। कृष्ण ने इसको एक दूसरे रूप में गान किया, उन्होंने उसी को ध्रुपद रूप में उसी गान को, और कृष्ण कहते हैं सब उसमें राधिका जी के चरण के निकुट छिटक करके ही चले। कृष्ण दौड़ करके गए उसको लेकर के उनके चरणों में, कितना उस समय आनंद हो रहा हो, सभी को क्या देख रही हैं, हमारी जैसी सौभाग्यवती कोई नहीं है, किंतु एक दूसरे को वो नहीं देख रही। कृष्ण सबके साथ में वैसा ही कर रहे हैं और सभी समझ रहे हैं कि कृष्ण हमारे पास में केवल है। उनको सौभाग्य मत हुआ, ये हमारे ही कृष्ण हैं और दूसरों के नहीं, कृष्ण हम ही हमारे चरण दबा रहे हैं, हमारे पेट पूछ रहे हैं, हमारे प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए सब गोपियों को सौभाग्य मत अर्थात ये हो। और दूसरे को श्रीमती राधिका जी को हुआ, अरे ये सबके समान मैं ही हूं, बस उनको हो गया मान, इसलिए कृष्ण ने देखा अब तो राज होगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उनका मान दूर करने के लिए, प्रसादन करने के लिए, और गोपियों का जो सौभाग्य मद था मद को दूर करने के लिए, चूर्ण करने के लिए, और राधिका का प्रसादन करने के माने उनका मान भंजन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए राधा जी को साथ में लेकर के अंतर जाने। गोपियों सारी कहां गए, ये इसके बाद में राधा जी से उनका मिला, वो खुद करके तन्मय हो रही हैं, पेड़ों से पूछ रही हैं, जीवनों से पूछ रही हैं, तन्मय होकर के कृष्ण जैसी लीला करने लग गई, सुदबुद्ध हो गए, कोई मूर्छित होकर के गिर पड़ी, और इधर में कृष्ण क्या कर रहे, उनको एक जगह बैठा करके फूल चयन किया, राधा जी के श्रृंगार कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ करके उनसे विनय कर रहे हैं, आप अपना मान छोड़िए, स्मरगर लखंडनम मम शिव शिवंडनम देवी देवी पद पल्लव, आप मान जाइए मैं अपना सिर तुम्हारे चरणों में झुका रहा हूं, आज तक कृष्ण ने भगवान ने राम ने ऐसा किया कभी, ये प्रेम है, प्रेम तुम्हारे पर ब्रह्म भी भक्तों के नीचे सिर दबा लेते हैं, प्रेम से ही नंद बाबा की ड्यूटी अपने सिर पर रख करके चलते हैं और गोपियों की सेवा करते हैं। कोई एक ऐसा कृष्ण है श्याम थे रो गुलाम राधे राधे ना क्या गुलाम थे रो श्याम दोनों बरसाने वाली, ऐसे भक्तों में भी गुलाम बने क्या होता है, अरे दास कहने में भी तो कुछ अच्छा रहता वो गुलाम बन तो गुलाम बन वाली बन जाते हैं, इस प्रेम में ऐसा ये प्रेम है, श्रृंगार किया, श्रृंगार करके आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, इतने में गोपियां खोजती हुआ निकट आई, कृष्ण ने कहा अरे जरा छिप जाए हम लोग यहां से आगे बढ़ जाए, नहीं तो गोपियां आ जाएंगी फिर तुम्हारे प्रति चिंता होगी। राधा जी देख रही हैं जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, ये सब क्या हमारी प्राण स्वरूप हैं, ये न रहेंगे तो राष्ट्र भी नहीं हो सकेगा, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, ये सब कुछ छोड़ करके हमारी सेवा करती हैं, इसलिए इनको छोड़ करके अकेले कृष्ण की सेवा नहीं करूंगी, इसे सोची जो शक्तियां आ जाएं तब फिर सब मिल करके हम लोग का राज होगा।
कितना बड़ा त्याग, इस चीज को साधारण आदमी नहीं समझता, ये प्रेम का एक पंथ है। राधा जी ने कहा मैं तो अब चल नहीं सकती, मैं थक गई हूं। तब मतलब क्या है, आप जहां चाहे मुझे ले चल सकते हैं, मैं नहीं चलूँ। कृष्ण ने क्या किया, सुना अच्छा तो हमारे कंधे पर चढ़ जाओ। अरे राधा जी के कंधे पर ये कृष्ण को चढ़ा करके ले जाती तो एक बात थी, इन्होंने कहा कि हमारे कंधे पर चढ़ जाओ मैं तुम्हें ले चलूँ। ये प्रेम जीलन का पहलू है, इसको कहते हैं प्रेम। आजकल थोड़ा सा इधर हो जाए ना विवाह, प्रेम लव मैरिज कर लिया, कोर्ट में दे दिया, और इसके बाद में वो लड़की ने दूसरे की तरफ देखा या लड़के ने दूसरी एक देखा और परस्पर गोली मार करके बस विवाह हो गया, ये तो लव मैरिज है। ये लव मैरिज प्रेम नहीं है, ये है काम। और वहां पर क्या है, राधा जी कहते हैं हमारे सामने ही कई दूसरों को कृष्ण प्यार करते हैं, मैं उसकी दासी होकर के जन्म जन्म मानता तक उसकी सेवा करूं, ये है। इसको कहते हैं राधा जी सहेलियों से अलग बिछुड़ करके कृष्ण की सेवा नहीं करने चाहती, और कृष्ण गोपियों को बुलाने पर भी राधा जी को छोड़ करके कृष्ण के पास में नहीं जाएंगी, ये विशुद्ध प्रेम है। इस प्रेम में ये दिख रहा है मिलन में इतना कृष्ण की सब प्रकार से सेवा करने के लिए कृष्ण का प्रेम ही है, राधा जी भी है, राधा जी दूसरी नहीं, इसलिए हल्लाद नहीं करते। इन तत्वों को सब साधारण लोग नहीं। अब दूसरा पहलू चलिए, उद्धव जी गए हैं कहां, ब्रिज में। पहले का प्रसंग उन्होंने बताया, दूसरा प्रसंग नंद बाबा के बाद में उद्धव जी सवेरा हो गया, कृष्ण की चर्चा चर्चा करते 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 रात हो। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे उन्होंने स्नान किया, कृष्ण कुंड पास ही है, और जहां आगे बढ़े देखा एक बहुत कदम्ब का सघन बन है, उस कुंज में सब गोपियां हैं। आज हो गए कितने दिन, 3 महीने गोपियां घर में नहीं लौटी, सभी विरह में तड़प रही हैं, और वहां पर हैं 300, उसको कोई नहीं देखता। योग कुमार के प्रभाव से समस्त गृहस्थों ने पतियों ने देखा कि हमारी पत्नी हमारे साथ है और हमारी सेवा कर, किंतु जो असल गोपियां हैं वो बन में रही। उधर जिताज परम सौभाग्य, आज योग माया ने कुछ पर्दा उठाया, वो वहां पर प्रवेश करके देखा यहाँ पर तो गोपियां सब हैं, बस उधर ही ले चले। ऐ गोपी कह रही ये कौन आ रहा है, देखने में श्याम जैसा किंतु श्याम नहीं, उनका रूप कैसा था, कृष्ण के समान श्याम रंग, कृष्ण जैसे ही देखने में वैसे ही मधुर मूर्ति उनकी थी, चलन रहन सहन सब कृष्ण के समान, कृष्ण के सखा भी हैं, कृष्ण के मंत्री हैं। कृष्ण ने अपना वो हार गले का बन बांधा और अपने पीताम्बर सब उनको अपने हाथों से पहना दिया था। जहाँ राधा जी एक कमाल वृक्ष को देती हैं, आलिंगन कर लेती हैं, और ये दृश्य मिल गए, आज उद्धव जी उनके रूप से समान देखने में भी दस नजर हो गए, क्योंकि नहीं कौन आ गया, किस लिए आया, अरे सोने के रथ में चढ़ करके आया, अप्रूव तो नहीं आया, हो सकता है अप्रूव आया दूसरी का, तो अप्रूव किस लिए आएगा, तो अप्रूव का तो काम हो गया, कंस मारा गया, नहीं अभी तक जरूरत है, कंस मर तो गया उसका श्राद्ध नहीं हुआ है, इसलिए श्राद्ध में पिंड देना होता है, इसका पिंड नहीं दिया गया, ये पिंड की जरूरत है, इसलिए अब कुछ फिर रस लेकर के आया है, इसलिए पिंड नहीं देंगे, पिंड कहाँ मिलेगा, कृष्ण के विरह में यहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य और गोप गोपियां सब मरे पड़े हैं, इनका कलेजा लेकर के लोट ले जाने के लिए ये पिंड बना करके उसका देने के लिए ये आया है। उद्धव जी कहा जैसे हम करो सोने के रस पर चढ़ करके आए और यहाँ आया, मैंने गलती की, पृथ्वी देवी आप खड़ जाएं, ऐसा ताना मार रही हैं गोपियां हमारे प्रति, बड़ी लज्जित बड़े लज्जित हुए, हमें ये बनवाला क्यों पहन रखे, पीताम्बर मैंने क्यों धारण किया, रथ पर चढ़ करके क्यों आया, हमको पैदल आना चाहिए था और बैरागी देश में आना चाहिए था। एक ने कहा ये मालूम होता है हमारे श्याम का दूध है, मुझे कैसे समझ लिया, हमारे नाकों को भ्रम नहीं हो सकता, नाक जो सुगंध देती मन होता है, ये बनमाला जो है और ये कपड़े में श्याम का गंध मिला हुआ अंगों का, ऐसा मालूम होता है, झट पहचान कहीं दूर कृष्ण छिपे हुए हैं, उनके अंगों का गंध गोपियों को मालूम होता, समझ जाती है कृष्ण आ गए, उनको ढूंढ लेती, आज श्याम के अंगों का गंध उस बनमाला में और कपड़े में है, इसलिए उन्होंने कहा हमारी आंख ये कभी भी भूल नहीं कर सकती, इसलिए जरूर श्याम का ये सेवक कोई है, दूध है, आया है, किस लिए आया है, ہم لوگوں سے کیا مطلب؟ یہ ضرور آیا ہوگا کوئی اپنی ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے, ماتا پتا کا رکت ہی وجے ہی سب کچھ اس پتر میں ہوتا ہے. اس لیے پتنی تو بدلی جا سکتی ہے اور ہم تو ان کی پتنی بھی نہیں, ان پر ہمارا کوئی ادھیکار نہیں, تو پتنی کی تو نہیں. اس لیے ہم لوگوں کے لیے نہیں بھیجا. بھیجا کس کے لیے؟ میا اور باپ کو سانتوانا دینے کے لیے بھیجا. تو ٹھیک ہے, تو میا باپ کو سانتوانا دے کے لیے نند بھون میں جائے, یہاں تو کس لیے آ رہا ہے؟ سن سن کر کے تانے ان کے اور پریم بھری باتیں سن کر کے ادھو جی بڑے لجیت ہو رہے ہیں. اور نکٹ میں آئے, گوپیوں سے باتیں کی, ان لوگوں نے لے کر کے دھیرے دھیرے جہاں رادھکا جی تھی وہاں دیکھا ایک سونے کی پتلی جیسی کمل کے پھولوں کے سجا پر سوئی ہوئی. جی رہی ہے یا مر رہی ہے کوئی پتا نہیں. سانس دیکھ میں دیکھنے کے لیے للتا وشاکھا جی روئی تھوڑی سی لے کر کے اس کے ناک پر دیتی ہیں, اپنے ہاتھوں کو لے جاتی ہے کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں. اور وہ کیا کر رہی ہے؟ جھینتی کرشن سنگمم, دیکھا کہ کرشن کہاں گئے ہمیں چھوڑ کر, سوئے ہو سو رہی ہے. ان کو نیند کہاں؟ رادھا جی کری ہماری دو سہیلیاں تھی, ایک تھی مورچا اور دوسری نیند, سو جانا, جس میں اپنے دکھوں کو ہم ہلکا کچھ کر لیتی ہیں. ارے تو دن بھر ان کا سمرن ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دکھی دکھ شام کدھر گئے, کہاں گئے, تڑپ رہی ہیں. جدی نیند آ گئی تو دکھ کم ہو گیا. کسی روگی کو رات میں جدید نیند آ جاتے ٹھیک, نہیں تو رات پر 12 بجے, 1 بج گیا, 1 بج کر کے 1 منٹ ہوا, پھر دیکھا 1 منٹ سے 2 منٹ ہوا, کرا رہا ہے کرتے تھے, رات بیتے جیتتی نہیں. ڈاکٹر کہا آ کر کے انجیکشن دے دیا, مشکل ہو گیا تو بھی تھوڑا سا. پھر پوچھا کھلی بیٹھے, تو یہ دو سہیلیاں تھیں وہی کرشن اپنے ساتھ وارتا میں لے گئے, اور مورچا بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی, تو رادھا جی کو نیند کیسے آئے؟ اس سمے میں دیکھ کے آ رہی ہیں, دیکھا کیا کرشن متھرا سے چلے گئے بنا استریوں کی مہیلاؤں کی کشوریوں کی ارا نہیں سکتے, یہاں سے چلے گئے متھرا میں. اور متھرا میں راجکماری آدمی چلی ہیں, راجکنیائے ہیں, ان کے ساتھ میں بات چیت کر رہے ہیں, بلاس کر رہے ہیں, یہیں سے دھیان کیا اور دیکھ کر کے اس کو کروز ہوا, کچھ مان ہوا, اور اتنے میں ایک بھرمر وہاں پر بھن بھن کرتا ہوں. بھرمر کیسا کالا, کرشن کیسے کالا, کرشن جیسے کپٹی دھوت ایسے یہ اس کو اسی روپ میں دھوت مانتے ہوئی اور مان کر ایک بھرمر اٹھتا ہوا آیا, ان کے چرنوں میں گھومنے لگا. چھوٹا جو کمل ہے رادھا جی کے چرن کملوں میں سگندھ کمل جیسا, وہیں پر بھن بھن کرتا رہا. رادھا جی کو بڑی مشکل سے اٹھا کر کے بیٹھایا, مانو بڑبڑانے لگی اپنے آپ, ارے تم کہاں سے آ گئے, آیا کہاں سے, تم کو شسٹاچار کا گیان نہیں ہے, مدرا پان کر کے آیا, مدیہ پان کر کے آیا. اور مدپوری میں تو اس کے بڑے کھجانے ہیں, ہول سیل ڈیلرس ہیں, ایک کالا سا ویکتی ہے جس کا ہول سیل ڈیلر ہے, وہ خود ہی وہ پی کر کے مت اور اس میں مت ہوا رہتا ہے. ایسے تم کو اپنا دودھ بنا کر کے تم بھی ایسا ہی وہی مدھو کا پان کر کے یہاں پر آیا. سوامی جی آپ ایسا مت کہیں گے, منو بھن بھن کرتا ہے تو من ہی من میں وہ دیکھ رہی ہے, میں مت مت کہاں کر پی کر آیا. ارے سر گلفوں میں یہ کیا ہے, گلفوں میں یہ کمکم کہاں سے لگایا بتا تو تم, میں جانتی ہوں جو کہاں سے لگا کر متھرا پوری میں سہیلیوں سے ملا ہوگا, کسی کا وہ لگ گیا ہوگا تمہارے بلمالا میں, بلمالا پر تم ان کی بیٹھا اور وہاں سے تم کو لگ گیا. بھگو بھگو اپوتر وہاں سے آیا, جان نہیں ہمارا پیر چھونے کے لیے, بھگو یہاں سے پیر مت چھو. ارے جس کی دودھ کی یہ اوستھا وہ نہ جانے جدوؤں کی سلام میں نہ جانے کیا کرتا ہوگا, اور جدوبندی لوگ اس کو کہیں اپمانت نہ کرتے جب انہوں نے دیکھ لیا تو. ابھی تک تو بچا ہوا, کہ تو میں سمجھتی ہوں جس کا دودھ ہی ایسا ہے جس کو گیان نہیں ہے وہ اس کا پتی کیسا ہوگا, جیسا وہ کپٹی دھوت ایسا ہی یہ کپڑے دھوت ہے. کوئی بات نہیں ہے, اپنے آپ کہہ رہی ہیں. یہ پریم کا دوسرا پہلو ہے برہ کا, برہ میں بھی ان کا مان, برہ میں مان ہوتا ہے, किसी को नहीं देता, वो तो दुखी रहेगा, या व्यक्ति दुखी रहता है। और ये हीरा में भी मांग कर एक बात कहती है, सकृत अदर सुधान सांग मोहिनी पाई स्वा सुमन संयोग शब्द सत्तजे स्मान अभवादी। तो भौर के समान है, कैसा एक फूल पर चला फिर दूसरे पर चला गया तीसरे पर चला गया, उसका कोई ठीक नहीं है, इस तरह से भूमों में भ्रमण करना है, फिर लौट करके नहीं आता। कृष्ण भी तुम्हारे पति तुम्हारे भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे स्थान नहीं, जाओ करा। इस तरह से उसे बातें कर रहे हैं निराली एकदम, कैसे बातें अटपटी कर रही हैं, जाओ ब्रज में वहां जाओ मथुरा में, वो तुमको कुछ देंगी, हमारे पास में तो कुछ है नहीं, जिनके प्रेम में हमने सर्वस्व छोड़ दिया है, हमारे पास में दानन देने के लिए चना तक नहीं, जाओ वहां, वहां पर तुम लोगों का मान छुड़ाना, एक दूसरे से मान करेंगी फिर तीसरी मान करेंगी चौथी, और वहां पर जाकर तुम उनके खूब गुणगान करना। इस तरह से अटपटी बातें कर रही हैं, यह है विरह का पाय। अंत में कहती हैं, हमसे उनसे संधि अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे स्वामी जी, आपकी अपेक्षा दूसरों की चिंता नहीं करते, मानो फनफन से वो ऐसा समझ रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं संधि नहीं हो। क्यों? उस कपटी धूप से अब नहीं हो सकती, काले श्याम रंग की चीजों से ही हमें नफरत है, अब उनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं। एक काला था त्रेता युग में, श्याम राम का नाम नहीं किया उनका, राम नाम, एक श्याम, एक श्याम ये है और दूसरा श्याम वो था जो बन में गया, कितना सुंदर। और जब उसने अपने सिर के केसों के बालों को जटा बना करके और यहां पर लगाया, उसमें एक फूल का माला लगा दिया, विश्व उस पर अपना सर्वस्व दे सकता है, अपने साथ में अपनी प्रिया को ले गया, वहां पर प्रिया को ले जाने की क्या जरूरत थी, बनवास है तो उसको लेकर के गया, कहता है कि मैं स्त्री जीत हूं, इंद्रों को मैंने दमन कर दिया, धनुष बाण साथ में रखने की क्या जरूरत, अरे बनवासी है तो बनवासी जैसा जाओ, दंड ले लो सन्यासियों का, उसकी भी जरूरत नहीं, वहां पर बंदरों, बंदर का कोई मांस नहीं खाता, एक बंदर को मार गिराया, कौन बंदर, किस लिए, दोष क्या था, वो इसकी पत्नी को कोई चुरा ले गया और दूसरे एक से सुप्रीम उसकी पत्नी को कोई दूसरे ने चुरा लिया, अब दोनों हो गए विद्रोह, दोनों ने कहा कि हम लोग फ्रेंडशिप कर लें, मित्रता, हम तुम्हारी स्त्री को उद्धार कराएंगे और तुम हमारी स्त्री को, मिताली हुई अग्नि को साक्षी देकर हमारी स्त्री को तुम पता लगा करके लाएगा कहां जरूर, अच्छा हम तुम्हारी स्त्री को दिला दें। इसके बाद में उन्होंने बाली को मारा, बाली ने कहा कि हमको मारा किस लिए, अरे हमको कह देते तो हम रावण को पकड़ करके सीताजी के साथ में तुम्हारे पास मिला देते, ये क्या करेगा, किसने मारा, और कहता कि मैं स्त्री जीत हूं, अपनी स्त्री के कहने से सोने का हिरण बंद करने गया उसे पकड़ करके लाने के लिए, और वहां पर क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने मना किया, लक्ष्मण की बात इन्होंने नहीं मानी और उस हिरण को मारने के गए, इसके बाद में सीताजी की चोरी हो गई, सुपर्णखा उसका नाक कान काट लिया, किस लिए, स्त्रियों का यह साल तो करना उचित नहीं। एक और काला था बामन, उसने क्या किया, उसने छोटा सा रूप धारण किया, था तो बहुत लंबा चौड़ा, और छोटा रूप धारण करके बलि महाराज जी से मांगने के लिए कुछ गया, तीन पद भूमि हमें दीजिए, मैं तीन पद भूमि क्या, तुम पृथ्वी ले लो, नहीं नहीं हम तो ब्राह्मण के लड़के हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी एक भजन करने के लिए कुछ चाहिए, बस तीन हाथ से मिलते, अच्छी बात है ले लो। जब मापने का हुआ तब क्या किया, अरे जिस रूप से तुमने मांगा था उसी रूप से मापो, तो इसने क्या लंबा चौड़ा रूप बनाया, एक पद से सारी पृथ्वी को माप, और दूसरे से भूख भुआ स्वा वहां जाना तप तक सब लोग ले, अब तीसरा पैर कहां रखूं, उन्होंने कहा कि हम ही को माफ दीजिए, मेरा सर्वत तुम्हारे चरण, और इसके बाद उसको बांध करके रख दिया, जैसे काग होता है ना काला, वो कुछ खाते भी हैं और छुपराते हैं उस व्यक्ति को जो लेकर के जाता है इन लोगों से, इसलिए ऐसे व्यक्ति कालो व्यक्ति से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, तो ये देख करके तन्मय हो गए, ऐसा प्रेम जगत से हमने नहीं देखा, इसलिए कहते हैं आसाम हो चरण रेण साम हम श्याम वृंदावने की मैं बोल रहा हूं, ओ ऐसा प्रेम हमने जगत से नहीं देखा, मिलन में ऐसा प्रेम और बिछुड़न में भी विरह में भी ऐसा थे न भूतों न भविष्य। इसलिए गोपियां जहां पर हम खास होकर के जन्म ग्रहण करें, गोपिया जन्म की चरण धूली हमारे सिर पर यदि लग जाए हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बंदे नंद ब्रजेशी नाम पाद रेणु मधु हरिकथाम हरिकथा पुनाद। ऐसे गोपियों की चरण की धूली को, एक चरण की धूली यदि हमारे सिर पर लग जाए हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री कहते हैं उस धूली को मैं बहुत दूर से प्रणाम करता हूँ। किस लिए? गोपियों में यह पारक पूर्ण उद्देश्य है जो कृष्ण को प्रतिष्ठित कर देती है, उनको प्रतिपूर्ण कर सकते, यही श्रीमद भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। यहाँ तक तो हुई पूर्व लीला, अब इसके बाद में क्या होगी? उत्तरार्ध की लीला। अब उसमें स्वाका की लीला सब चलेंगी अब कल सवेरे या अब होगा। कितना बच गया? हाँ, इसलिए आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थोड़ा सा मैंने दिव्य दर्शन कराया, इसे प्रेम की जरूरत है। यदि कृष्ण के प्रेम के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम हुआ तो इस जगत में तो प्रेम होगा नहीं, पहले श्रद्धा होगी, हरि कथाओं में श्रद्धा होगी, फिर निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव होगा, तब प्रेम। हम लोग इसी के लिए प्रयत्न है। यदि यह श्रद्धा भी आ गई हृदय में तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। यदि कृष्ण के प्रति नहीं, भागवत की कथा के सुनने में भी यदि रुचि उत्पन्न हो गई, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति का भी इसमें उपकार हुआ, इन कथाओं को सुनकर के भगवान की तरफ में वो मुड़ गया, हम लोग समझे कि हमारा भागवत कहना और सुनना सार्थक हुआ। पैसे से हम लोग वजन नहीं करते, पैसे से वो दूसरे जो कथावाचक होते हैं अपने परिवार का पुत्र का पालन करने वाले वो लोग विचार करते, हम लोग